अगले दिन जब वो उठी तो शान फिर कमरे से गायब था। वो नहाकर फ्रेश हुई, फिर नीचे जाने लगी तो सीढ़ियों के दूसरे तरफ बने जिम पर नज़र पड़ते ही उसके कदम रुक गए। कुछ पल सोचने के बाद उसने जिम के तरफ कदम बढ़ा दिए, पर जैसे ही वो गेट पर पहुंची, उसका दिल जोरों से धड़क उठा। दरवाज़ा खुला था और गेट पर पहुंचते ही उसकी निगाहें अंदर पुलअप करते शान पर चली गईं, जिसने पुलअप बार को पकड़ा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी हवा में लटक रही थी। उसके सिक्स पैक एब्स बहुत आकर्षक लग रहे। शान ने ऊपर से कुछ पहना हुआ नहीं था, एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। बहुत ही हॉट लग रहा था वो इस वक्त। चेहरे पर हमेशा वाले गंभीर भाव थे और सारा ध्यान काम पर। आरवी की नज़रें उस पर ठहर सी गईं और धड़कनें तो ऐसे दौड़ने लगीं जैसे दिल सीधा सीने से बाहर ही आ जाएगा। आरवी एकटक शान को देख रही थी। वो था ही इतना हैंडसम कि किसी भी लड़की के लिए उस पर से नज़रें हटाना, उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होना नामुमकिन था। और इस वक्त तो वो बहुत ही दिलफरेब लग रहा था। कोई भी लड़की अगर उसे अभी देख ले तो उस पर अपना दिल हार जाए। शान तो पुशअप्स कर रहा था, पर उसे किसी की नज़रों का खुद पर होने का एहसास हुआ तो वो नीचे उतर गया, और जैसे ही वो पलटा, आरवी हड़बड़ाकर दीवार से जा चिपकी। शान ने उसे देखा नहीं, फिर भी उसे लगा जैसे वहाँ कोई तो है। उसने सोचते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। आरवी अपनी आंखें बीचे दीवार से एकदम चिपक कर खड़ी थी। डर के मारे उसे पसीने आने लगे थे कि आज अगर वो शान के हाथ लग गई तो उसे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ उस सन्नाटे को चीरते हुए शान के तेज कानों तक पहुँच रही थी। आरवी मन ही मन भगवान को याद करने लगी कि आज उसे बचा ले। शान गेट पर पहुंचा और जैसे ही नजरें घुमाने को हुआ, छाया एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ ट्रे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, भैया आपका जूस। शान ने उसको शक भरी नज़रों से देखा और नज़रें घुमाने को हुआ तो छाया फिर उसके सामने आते हुए बोली, क्या हुआ भैया, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, शान ने अब उसको देखकर कहा, फिर सोचते हुए बोला, अभी यहाँ तुम थी, मतलब मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा था। हाँ हाँ भैया, मैं ही थी और कौन होगा। आपको पता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कितने कमाल के लगते हैं, मन करता है बस देखती हूँ जाऊँ, बिल्कुल हीरो जैसे लगते हैं, इसलिए मैं आपको देख रही थी। छाया ने तुरंत ही बात संभाल ली, पर शान को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने छाया को साइड किया और हर जगह देखा, पर वहाँ कोई नहीं दिखा तो वो कुछ परेशान हो गया। छाया ने चैन की सांस ली और उसके पास आकर बोली, क्या हुआ भैया, आप किसे ढूंढ रहे हैं? सच में मैं ही आपको देख रही थी, आप बहुत हॉट लग रहे हैं ना, बस इसलिए आप पर से नजरें नहीं हटा पा रही थी, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। शान उसके मुंह से हॉट शब्द सुनकर उसको घूरने लगा था तो उसने झट से माफी मांग ली। शान उसको घूरते हुए वापस अंदर चला गया। तब कहीं जाकर छाया ने चैन की सांस लेते हुए खुद से कहा, बच गई। इसके बाद उसे याद आया कि जब वो यहाँ आई थी तो आरवी को दीवार से चिपके खड़े देख वो हैरान हो गई थी। फिर उसने शान को बाहर आते देखा तो पल में वो सारी बात समझ गई, और शान आरवी को देख पाता उससे पहले ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर आरवी ने अपनी आंखें खोली तो उसने हाथ से उसको जाने का इशारा कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि शान तब तक उसकी बात नहीं मानता जब तक वो खुद चेक नहीं कर लेता। आरवी का घबराया हुआ और डरा हुआ चेहरा याद करके छाया के लबों पर शैतानी मुस्कान फैल गई और वो नीचे चली गई। किचन में गई तो आरवी सब्जी बना रही थी। छाया उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, भैया बहुत हॉट लगते हैं एक्सरसाइज करते वक्त जब वो बिना शर्ट के होते हैं। हाँ बहुत हॉट। आरवी शान को कुछ देर पहले उसने जैसे देखा था उस पल में खोई हुई सी बोलने लगी, पर अचानक ही उसको एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही है। वो चौंक कर होश में आई और झटके से सर घुमाकर देखा तो छाया लबों पर शरारती मुस्कान सजाए उसे ही देख रही थी। बेचारी आरवी की तो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। अनजाने में एक गड़बड़ वो ऊपर करके आई थी और दूसरी अप कर दी थी। आरवी घबराई हुई सी उसे देखने लगी। उसके अचानक चुप हो जाने पर छाया ने फिर से कहा, क्या हुआ भाभी, चुप क्यों हो गई? कहिए ना, शर्टलेस होकर भैया बहुत हॉट लगते हैं, बिल्कुल अक्षय कुमार जैसे, हॉट एंड हैंडसम। मुझसे क्यों पूछ रही हूँ, मुझे क्या पता? आरवी ने नजरें नचाते हुए जवाब दिया और झट से आगे बोली, मैं जरा बड़ी माँ को देखाऊँ, पूछ लेती हूँ आज क्या बनाना है। वो झट से वहाँ से भागने लगी तो छाया ने पीछे से कहा, बहाने क्यों बना रही हैं भाभी, बड़ी माँ ने तो ये जिम्मेदारी आपको सौंप दी है, तो अब उनसे क्या पूछने जा रही हैं। आरवी के कदम रुक गए, उसने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस आकर अपना काम करने लगी। छाया ने अब फिर से कहा, वैसे आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए, आज मैंने आपको बचा लिया। अगर भैया को पता चल गया होता कि वहां मैं नहीं आप थी और आप ही उन्हें निहार रही थी तो बहुत गुस्सा करते आप पर। आरवी ने अब धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। छोड़िए भाभी, मुझे तो आप इतना बताइए, जब भैया शर्टलेस होते हैं तो लगते हैं ना बिल्कुल मेरे फेवरेट अक्षय कुमार जैसे, हॉट एंड हैंडसम। उसने फिर से वही सवाल किया। बेचारी आरवी बुरा फंसी थी, चोरी भी की और पकड़ी भी गई। उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो छाया की आंखें चमक उठी। उसने बड़ी ही उत्सुकता के साथ सवाल किया, भाभी आपको भैया कैसे लगते हैं? मतलब अब तो आप दोनों की शादी को एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, अब तो आप उन्हें समझने लगी होंगी ना, कैसे लगते हैं भैया आपको?
उसका सवाल सुनकर आरवी के हाथ रुक गए और आंखों के सामने वो सभी पल घूम गए जब वो शान के साथ थी। उसकी घटिया बातें, गंदे इल्जाम, धमकी सब याद करके उसका मन कसैला हो गया। फिर उसे परसों का उसका व्यवहार याद आया। सोते वक्त उसका छोटे बच्चे जैसा मासूम चेहरा याद करके उसके लब हल्का सा मुस्कुरा दिए। अंशु के साथ जब वो होता था उन पलों को याद करके आंखों में चमक आ गई। जब से वो उसके साथ थी वो सारा वक्त उसकी आंखों के सामने घूम गया और अलग अलग भाव उसके चेहरे पर घूम गए। छाया उसको बड़े गौर से देख रही थी। जब आरवी ने कोई जवाब नहीं दिया तो छाया ने फिर से सवाल किया, बताइए ना भाभी, कैसे लगते हैं आपको भैया? उसकी आवाज आरवी के कानों में पड़ी तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने उसे देखा, फिर शान के बारे में सोचते हुए बोली, जितने बुरे वो दिखाने की कोशिश करते हैं उतने हैं नहीं। नेक दिल इंसान है, हर रिश्ते की इज्जत करते हैं, सबका आदर करते हैं, अपने परिवार से और जो लोग उनसे जुड़े होते हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। अंशु में उनकी जान बसती है, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करते, पर बड़ी माँ की वजह से पहले उन्होंने मुझसे शादी करके मुझे सबके सामने बेइज्जत होने से बचाया और फिर अंशु और बड़ी माँ की वजह से मुझे इस घर में और अपने कमरे में रहने दिया। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या दिक्कत है, क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, पर ये एक अलग बात है, उनकी कोई मजबूरी होगी। अभी तक भी मैं उन्हें ढंग से समझ नहीं पाई हूँ। एक पल पहले वो कुछ होते हैं और अगले ही पल कोई और बन जाते हैं। उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। अभी भी मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें समझ सकूँ। पूरी तरह से तो अभी भी उन्हें नहीं समझ पाई हूँ, पर जहाँ तक मैंने उन्हें जाना है वो एक अच्छे इंसान है। हाँ, थोड़े मूडी हैं, गुस्सैल हैं, अकड़ू हैं, बहुत ही कड़वा बोलते हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं।
मेरी मम्मी के सामने उन्हें कुछ गलत नहीं किया, वजह चाहे जो हो, पर उन्होंने मेरी मम्मी को हर्ट नहीं होने दिया। शायद उनके पत्थर से सख्त सीने में एक साफ दिल धड़कता है। दिखते तो अच्छे हैं ही, कामयाब भी हैं, पर दिल के भी अच्छे हैं। भले ही जब मुंह खोलते हैं तो जहर उगलते हैं, पर फिर भी अच्छे लगते हैं। आई होप मैं कभी उन्हें अच्छे से समझ पाऊं और जैसे सबके लिए उनके दिल में प्यार है, वैसे ही थोड़ी सी जगह मुझे भी मिल जाए उनके दिल में। बिल्कुल मिलेगी भाभी, आपको पता है आप और भैया ना एक जैसे हैं। जैसे आपका दिल है ना, जिसमें हर किसी के लिए प्यार और परवाह है, वैसे ही उनके दिल में हर इंसान के लिए प्यार है। वो तो इतने अच्छे हैं कि अगर किसी अनजान को भी तकलीफ में देखते हैं तो उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। पता है भाभी, जब मैं उनसे मिली थी ना, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी सिर्फ मम्मी थी, और उस दिन बीमारी की वजह से वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। पैसे नहीं थे ना हमारे पास इलाज के लिए, तो उनका ऑपरेशन नहीं हो सका और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं हॉस्पिटल के बाहर कोने में अकेली बैठी रो रही थी, तभी मेरे कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने शान भैया खड़े थे और उनकी गोद में एक छोटी सी सफ़ेद रंग की परी थी। बहुत सुंदर थी वो बच्ची, पर बहुत रो रही थी। भैया उसे चुप करवा रहे थे लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। बहुत छोटी थी, शायद तब उसका जन्म ही हुआ था और उसे उसकी माँ चाहिए थी, इसीलिए वो रो रही थी। मुझे बचपन से बच्चे बहुत पसंद थे। हमारे चौल में जितने भी बच्चे थे सबसे दोस्ती थी मेरी। कोई भी बच्चा हो, मुझे भले ना जानता हो, पर मेरे पास आकर वो चुप हो जाते थे। जब मैंने उस छोटी सी बच्ची को बिलख कर रोते देखा तो मैं अपना दर्द भूल गई, उसके आंसू नहीं देख पाई और उठकर भैया से बच्ची को देने को कहा। पर भैया मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा तो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए मैंने उन्हें अपने बारे में बता दिया। तब जाकर उन्होंने मुझे उस नन्ही सी बच्ची को दिया। वो पहला दिन था जब मैंने अंशु को अपनी गोद में लिया था और कुछ देर पुचकारने पर ही वो चुप हो गई और मेरी गोद में बड़े आराम से सो भी गई। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और शायद भैया के पास ऐसा कोई नहीं था जो अंशु को संभाल सके। तब भैया इतने अमीर नहीं थे, वो मुझे अपने साथ घर ले आए। उस घर में सब थे, बड़ी माँ, बड़े पापा, अंकल, दो फ्लोर थे उस घर में। उस दिन से भैया ने मुझे अंशु को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। रहने को घर, पहनने को कपड़े, खाने को खाना, सब मिला मुझे यहाँ। साथ में सबका प्यार और इज्जत भी मिली। तब भैया ने अपना काम शुरू ही किया था। वो सारा सारा दिन बाहर रहते थे, पर घर आते ही सबसे पहले अंशु को ढूंढते थे। उनके पास तब इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने कभी किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दिन रात रेहान भैया के साथ काम करते और रात को अंशु को संभालते। अंशु को गोद में लेते ही जैसे उनके अंदर नई ऊर्जा आ जाती थी। उन्होंने सालों कड़ी मेहनत की है तब वो यहाँ पहुँचे हैं। शुरू में तो छोटा मोटा प्ले ऑर्गेनाइज करते थे, फिर धीरे धीरे खुद का इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और अब उनका नाम जाने माने कामयाब प्रोड्यूसर्स में लिया जाता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई मकसद छुपा है, पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर सकी भैया से ये पूछने की। पता है,
आज भी वो कितना ही बिजी क्यों ना हो, उनकी रात भी अंशु का चेहरा देखकर होती है और दिन की शुरुआत भी उसी के चेहरे को देखकर होती है। मैं इतने सालों से उनके साथ हूँ, इसीलिए आपको बता सकती हूँ, शान भैया इंसान नहीं, फरिश्ता है। वो अपने आसपास रहने वाले हर इंसान की खुशियों का ध्यान रखते हैं। सब कहते हैं कि उनके अतीत में ऐसा कुछ हुआ है कि वो पत्थर दिल बन गए हैं, शायद इसीलिए वो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे। पर देखिएगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आप भी भैया को समझ जाएंगी और भैया को भी एहसास हो जाएगा कि आप बहुत अच्छी हैं, आप ही हैं जो उनकी जीवन साथी बनकर हर कदम में उनका साथ दे सकती हैं।